श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 14। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे भाई, अगर भगवान को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि हम लोग माया के द्वारा मोहित हैं, तो हम ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, हम कर्म करेंगे, इससे हम शुद्ध या योग करेंगे, इससे तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये माया को पार पाना यह असंभव ही है, प्राय प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। जब भगवान बोल रहे हैं दुरत्या अत्यंत मुश्किल है, तो हमारे लिए तो यही समझ में आना चाहिए कि ये असंभव है। जैसे कि हम एक अंदाजा दे रहे हैं हम लोग कि अटलांटिक ओशन को हम लोग अटलांटिक महासागर को हम खाली तैर के पार करना चाहें तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो लेकिन इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण के जब चरणों की व्यक्ति शरण लेता है, भक्ति करता है, तो ये जो भव सागर है ये एक छोटे से पानी के मान लीजिए जैसे कि एक बछड़ा है और वो मट्टी पे पांव रखे और उसमें गड्ढा बन जाए और उसमें पानी आ जाए तो उसको लागने पे कितना मेहनत होगी? कोई मेहनत नहीं होगी। तो अगर व्यक्ति अपना ही केवल प्रयास करे तो और भक्ति का आश्रय ना ले तो वो इसको पार नहीं पा सकता। लेकिन भगवान के अगर कोई शरण लेता है तो बड़ी आसानी से माया से मुक्त हो जाता है। अपितु हम लोग अपनी मुक्ति से केवल एक क्षण की दूरी पे हैं। मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस बात की पुष्टि भगवान 8वें अध्याय में भी करेंगे। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई गुंडा हो तो पुलिस से बच जाएगा लेकिन आर्मी से तो नहीं जीत सकता ना। ऐसे ही जीवात्मा ऐसे भी अणु है और भगवान विभु हैं, उनकी शक्तियां अनंत हैं, तो उनसे उससे पार पाना ये जीवात्मा के लिए असंभव है अपनी शक्ति से। ये बात प्रभुपाद यहां बता रहे हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अथवा देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है, यानी कि हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूले रहते हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, अपितु अतिक्रमण करने के बारे में सोचता भी नहीं है। जैसे हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो हम स्वप्न से निकलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम स्वप्न देखते हैं, चाहे वो बुरा स्वप्न हो चाहे वो अच्छा स्वप्न, हम उससे निकलने के बारे में सोचते ही नहीं। ये तो जब बाहर कोई शब्द होता है, हमारी नींद खुलती है तब हम सोचते हैं और तब उठते हैं और कहते ओह तो मैं स्वप्न देख रहा था। ऐसे ही जब तक कोई व्यक्ति भक्तों के मुख से ना सुने उसे कभी विचार ही नहीं होगा कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो कृष्ण का अंश है और उसका कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, जो कि माया से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है। तो अतिक्रमण कर नहीं पाएगा ना, बल्कि अतिक्रमण करने का प्रयास ही नहीं करेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। मतलब कि भौतिक शक्ति, अपरा शक्ति और पराशक्ति यानी जीवात्मा, दोनों ही शाश्वत हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कब जीवात्मा इस जगत में आया है, कब वो अपने आप को पदार्थ के रूप में पहचान कर रहा है, ये ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बीमारी कब हुई, कितने जन्म पहले हुई, कितने करोड़ों के जन्मों के पहले हुई, इसका निर्णय कर पाना निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। और इसको जान लेने से फायदा भी क्या होगा, मान लीजिए आपको मालूम चल जाए कि आप 1 करोड़ ब्रह्मा जी के जीवन पहले इस भौतिक जगत में आए थे, तो उससे होगा क्या? इसलिए बुद्धिमानी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कैसे मैं भगवान के धाम को वापस जा सकता हूं। और जो लोग भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, ये सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कम से कम हमको पता तो है कि भगवान का धाम है। कितने जन्मों के बाद ये बात मालूम चली है हम लोग सोच भी नहीं सकते। और कम से कम ये तो पता है ना कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। तो यानी प्रभुपाद एक चीज यहाँ बता रहे हैं कि भले ही हम लोग भौतिक प्रकृति से सुपीरियर हैं, चेतना से युक्त हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी आकर्षक लगती है क्योंकि ये भगवान की इच्छा के द्वारा संचालित है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि च अस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। दुर्गा देवी इस जगत की सृष्टि स्थिति यानी कि पालन और प्रलय करती हैं, किसकी इच्छा से? भगवान गोविंद की इच्छा से। तो सोचिए कितनी शक्तिशाली हैं भगवान श्री कृष्ण। यहां पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है, यानी भगवान किससे संबंधित है इस कारण से। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी मैंने श्लोक को कोट किया था, वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनाम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं। माया मिथ्या है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की प्रकृति है नहीं, अपितु इस जगत में हम जब अलग अलग वस्तुएं भोगते हैं तो वस्तु में 3 गुणों का ही प्रकटीकरण है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बहुत सारे पिक्चर, हम लोग तो नहीं लेकिन जो लोग बहुत पैसे दे करके पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, वस्तुतः वो केवल RGB रेड ग्रीन ब्लू इन 3 प्रकार के कलर से उत्पन्न किसी रोशनी को देख रहे हैं, लेकिन मोहित होकर के हम सोचते हैं कि यहाँ पे कोई सुंदर स्त्री है या सुंदर पुरुष है या फिर कोई भयानक घटना हो रही है या कोई हास्यास्पद घटना हो रही है, तो ये एक मूर्खता है। ऐसे ही हम जगत में विविधताएं देखते हैं, और विविधताएं हैं भी, लेकिन अंततोगत्वा वो सभी 3 गुणों का सम्मिश्रण मात्र है। और क्योंकि अंततोगत्वा 3 गुणों का सम्मिश्रण मात्र है, इसलिए उनका भोग करने से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, मुझे अलग अलग अनुभव हो जाएंगे और वो मेरे मन की अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रवृत्त होंगे, उनको हम सुख और दुख मान लेंगे, लेकिन वास्तविक सुख मुझे प्राप्त नहीं होगा जो कि भगवान श्री कृष्ण के पीछे है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ भी आ रहा है कि आप जानते हो कि जैसे पिक्चर दिखाई जाती है तो दृश्य तो सामने आपके उपस्थित हो रहा है, लेकिन दृश्य को प्रस्तुत करने वाला, प्रोजेक्टर को चलाने वाला व्यक्ति पीछे है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग उस पिक्चर में आसक्त हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि इसके पीछे प्रोजेक्टर चलाने वाला कोई है। ऐसे ही इस जगत से व्यक्ति आसक्त हो जाता है, इस जगत की विविधताओं से और चमक धमक से, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसके पीछे सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी या रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। हमने इसे पहले भी समझाया था कि मोह का अर्थ है देहात्म बुद्धि से ग्रसित होना और फिर उसी के अनुरूप कार्य करते रहना, लेकिन कृष्ण से, कृष्ण के संबंध में, कृष्ण की सेवा के लिए कोई कार्य ना करना, यह मोह का कारण होता है। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। तो आप कहेंगे, अरे भाई गुरु जी तो भी भौतिक शरीर में बद्ध लगते हैं, तो वो मुक्त कैसे है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि भले ही गुरु भौतिक शरीर में दिखे हैं, लेकिन जो उनका ज्ञान है, जो उनके पास ज्ञान है, जो साक्षात्कार है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये उनको क्वालिफाई कर देता है मुक्त अवस्था में होने का। इहा यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन से, कर्मों से और वचन से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, उसको हमें निश्चित रूप से मुक्त मानना चाहिए। तो एक प्रमाणिक गुरु यही बताते हैं और इसी के अनुसार अपना जीवन पालन करते हैं कि हम सब लोग कृष्ण के अंश हैं और हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए, और यही उपदेश वो अपने शिष्यों को भी देते हैं। तो इस प्रकार से भले ही लगे कि गुरु भौतिक प्रकृति में है, उनका शरीर भौतिक है, लेकिन हमको शास्त्र के आधार पर उनको मुक्त मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रिय सेवक हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और विचार कीजिए कि जब तक हम किसी वैष्णव से, भक्त से सुनते नहीं हैं, तब तक ये आइडिया आएगा क्या हमारे मन में कि हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए? नहीं आता है। क्या हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, भाई बंधु ये बात बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि उस व्यक्ति को भी मुक्त होना चाहिए। और एक और बात है कि भले ही हम पूरी तरह से मुक्त ना हो, लेकिन एक मुक्त व्यक्ति की बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम सही ज्ञान दे रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि निश्चित बात है कि मैं अपूर्ण हूं, लेकिन क्योंकि मैं एक पूर्ण व्यक्ति की बात को रिपीट कर रहा हूं, पूर्ववर्ती आचार्यों की, भगवान श्री कृष्ण की, जैसे उन्हें बोली थी वैसे ही, इसलिए इस बात में कोई दोष नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो भगवान है, तो भक्त भी बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कृष्ण भगवान है। इस कारण से जो बात है उसमें कोई दोष नहीं है, वो इंद्रियों की अपूर्णताओं से परे है। बिना किसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जो भक्त हैं, जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि अन्य लोगों को भी इस बारे में बताने का प्रयास करें, भले ही वो उनको ना स्वीकार करें और ना समझें। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान के भक्तों से नहीं सुनेगा, तब तक वो उसके लिए ये विचार कर पाना, समझना, ये बिल्कुल असंभव है। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंग शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे और सीखा इम्पॉर्टेंट, कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है भक्ति के माध्यम से, तो भगवान सहज रूप से उसके प्रति बहुत वात्सल्यमय हो जाते हैं। वात्सल्यमय तो है ही, लेकिन और अधिक कृपा मिलती है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इस संबंध में एक भक्त बता रहे थे कि एक बार वो छोटेपन में एक व्यक्ति के घर में अखबार देने के लिए गए, तो उनका एक बहुत भयानक कुत्ता था जिसने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उनके पास शक्ति नहीं थी उस कुत्ते से लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्हें मालिक को पुकारा, तो मालिक ने एक सीटी मात्र बजा दी और उससे कुत्ता वापस आ गया। ऐसे ही वास्तविक रूप से हम लोग माया से युद्ध नहीं कर रहे हैं और माया से युद्ध करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान का आश्रय जब हम लेते हैं तो भगवान इस माया के आवरण को हटा लेंगे अपनी शक्ति से धीरे धीरे करके। और इस संबंध में एक साधु और अच्छा बात बता रहे थे, कह रहे थे कि माया पूरी तरह जानती है कि मैं वो क्या ट्रिक अप्लाई करें जिसके द्वारा मैं मोहित हो जाऊं, लेकिन माया भगवान के नाम और भक्तों के संग को नहीं निरस्त कर सकती। तो इन दोनों चीजों का हमें आश्रय लेना चाहिए, भक्तों का संग और भगवान के नाम का आश्रय, तो फिर हम भगवान की कृपा से माया से मुक्त हो जाएंगे। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता विसर्वेशम विष्णु रेवन संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी व्यक्ति हमको मुक्ति नहीं दे सकता। मैं एक व्यक्ति को प्रचार कर रहा था तो उनको बताया कि आप दुर्गा जी की उपासना करते थे काली की, तो मैंने कहा कि काली की उपासना करेंगे ठीक है, आपको भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन आप रहोगे इसी जगत में, मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। तो भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले को भी इस भौतिक जगत में सुख सुविधा मिलती है, इस बात की पुष्टि भगवान 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान के धाम की प्राप्ति भी होती है। तो ये जो भगवान का ऑफर है वो बड़ा अच्छा है और एक्सक्लूसिव ऑफर है। माम एव, इसके दो अर्थ आप ले सकते हैं। एक कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेता है वो माया से मुक्त नहीं हो सकता, यानी भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर भगवान कृष्ण की शरण ली है, भक्ति करी है, तो निश्चित माया से मुक्त हो ही जाएगा कालांतर में, समय बहुत जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो मुक्त हो जाएगा। इस बात को भगवान आगे भी समझाते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जन्म मान लीजिए एक जन्म में भगवान के धाम नहीं भी पहुंच पाया, लेकिन उसकी भक्ति जो है वो बढ़ती जाती है, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है और अंततः तो भगवान के धाम की वो प्राप्त कर लेता है। अगर ऐसा है, इतना फायदे हैं, तो लोग भगवान के पास क्यों नहीं आते, उनकी शरण में क्यों नहीं जाते, इसकी चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। हरे कृष्णा।